ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ही सुंदर सा विषय हमारे आज के इस संध्याकालीन सत्र का, साइंटिफिक माइंडसेट थ्रू द प्रिज्म ऑफ विकसित भारत। वैज्ञानिक मानसिकता जो इस बात के लिए जाना जाता है कि हम सत्य को तलाशें, तथ्य पर विश्वास करें, जिज्ञासा का भाव रखें और सतत खोज करते चलें। ये जो एक वैज्ञानिक मानसिकता है, हमारी जो भारतीय मनीषियों की परंपरा रही है, हमारी आध्यात्मिक परंपरा रही है, उससे बहुत गहराई से ये मानसिकता जुड़ी हुई है। हमारे देश के ऋषि मनीषी प्रारंभ से ही वैज्ञानिक ही रहे, अंदर से आध्यात्मिक और बाहरी तौर पर समाज को, संसार को कैसे विकास के शिखर की ओर ले चलें, इस मानसिकता के साथ सतत वो कार्य करते रहे हैं। आज भले ही विज्ञान और आध्यात्म दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन हमारी पुरातन संस्कृति इन दोनों को साथ लेकर चलती रही है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो अनुसंधान समाज के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए हमारी ऋषि मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व किया, आज विज्ञान उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान की बात रही हो, चाहे शल्य चिकित्सा की बात रही हो, अणुविज्ञान की बात रही हो, या अन्य विज्ञान के क्षेत्र रहे हो, हमारे मनीषी जिनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था और अंदर से बहुत ही गहराई से अपने मूल्यों से जुड़े हुए थे, अध्यात्म से जुड़े हुए थे, उन्होंने बाह्य विकास भी मानवता के विकास के लिए किया, जिस बात का प्रतीक था कि यदि विज्ञान और आध्यात्म साथ साथ हो लें तो समाज बहुत खूबसूरत हो सकता है। विकास जो किया जाए वो मानवता के अहित पर आधारित नहीं, लेकिन मानवता के हित पर, मानवता के कल्याण पर आधारित हो। और आज जब हम एक विकसित राष्ट्र की ओर चल रहे हैं, उस नजरिए से हम वैज्ञानिक जो माइंडसेट है उसकी बात कर रहे हैं, उस पर आज के जो हमारे विद्वान वक्तागण हैं अपने बहुत ही अनुभवी विचार और चिंतन हम सबके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आज के जो हमारे मनीषी गण हैं उन्हें, आदरणीय श्री मधुसूदन पाल जी, भ्राता डॉक्टर सुशील चंद्रा जी, डॉक्टर सुप्रतिम रे जी, डॉक्टर देवदत्त रत्ना जी, बीके लवली बहन जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन विद्वान मनीषियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सचमुच आप सबने अपने पूरे जीवन जो अनुसंधान किया है और आध्यात्म से भी कहीं ना कहीं, मैं देखता हूं कि हर वैज्ञानिक आध्यात्मिक जरूर होता है, क्योंकि जब वो शोध करता करता एक बिंदु तक पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि ये जो रचना है, सृष्टि जिसकी खोज मैं कर रहा हूं, उसे इतनी बारीकी से जो रचा गया है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिसने इतनी सूक्ष्मता से इसे गढ़ा है। और इसीलिए आइंस्टीन महोदय भी ये कह गए जाते जाते कि एक चीज खोजने से मैं रह गया, जिसने इतने सारे मुझसे खोज करवाए, उस परम सत्ता, उस शक्तिशाली सत्ता, उस जगत नियंता तक मैं नहीं पहुंच पाया। वहां तक पहुंचना हमारे अनुसंधान का ध्येय होना चाहिए और हमारे विद्वान वक्तागण हमारे बीच हैं उसी सूक्ष्मता की ओर हमें ले चलने के लिए। तो आइए हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम कुछ पल शांति में परम शक्ति की स्मृति में बैठकर आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। एक शुभ शुरुआत जो हमारी संस्कृति है, जब उस परम सत्ता की स्मृति के साथ हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहा जाता है यदि शुरुआत शुभ हो तो कार्य बहुत जल्दी सुखद सुचारू रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में और हमारी भारतीय संस्कृति ही ये है कि हम हर शुभ शुरुआत ईश्वर की स्मृति से करते हैं। और साथ ही एक सुंदर हमारी परंपरा ये भी कि हम अतिथियों का बहुत दिल खोल कर अभिनंदन करते हैं, है ना। तो हम तो तालियों से अभिनंदन करेंगे लेकिन साथ ही मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो बुके और साथ ही साथ बैजेस से हमारे आज के जो मंचस्थ महानुभाव हैं विद्वान वक्तागण हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री मधुसूदन पाल जी, डॉक्टर देवदत्त रत्ना जी, टाटा डॉक्टर सुशील चंद्र जी, ये सब ऐसे विद्वान महानुभाव हमारे सामने हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अनुसंधान को अर्पित किया है और अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञानी हैं, अनुसंधानी हैं और साथ ही आध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। बहन लवली जी दो दिल्ली से हमारे बीच पधारी हुई हैं और जल्द ही डॉक्टर सुप्रतिम रे जी भी हमारे बीच पधारेंगे। बहुत शुक्रिया हमारी बहनों का। अब जैसा आज का विषय है वो विषय है क्या, कितनी इसकी आवश्यकता है, कैसे ये हमें एक नई दिशा दे सकता है हमारी सोच को, हमारे जीवन को, हमारे अनुसंधान को। और सचमुच जिस विकसित राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के साइंटिफिक माइंडसेट की आज आवश्यकता है, कैसे विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन हमें विकसित राष्ट्र के साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु के पद पर पुनर्स्थापित कर सकता है, उस चीज को स्पष्ट करने के लिए आज के कीनोट स्पीकर हमारे भ्राता डॉक्टर सुशील चंद्रा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे बीच पधारेंगे। डॉक्टर सुशील चंद्रा जी इज डीन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऋषिहुड यूनिवर्सिटी सोनीपत। आफ्टर सर्विंग 37 ईयर्स इन DRDO रिटायर्ड फ्रॉम इनमास DRDO दिल्ली एज एसोसिएटेड डायरेक्टर रीजनल हेड ऑफ कॉग्निटिव कंट्रोल एंड मशीन लर्निंग। लास्ट टू डिकेड्स हिज रिसर्च हैज बीन फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ सोल्जर्स यूजिंग मेडिटेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइक AI, ML, AR, VR, एटसेट्रा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुंदर सी बात भ्राता सुशील चंद्रा जी से जुड़ी हुई कि आप पिछले 24 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म का और मेडिटेशन का बहुत गहरा अभ्यास कर रहे हैं और आपने विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर एक सुंदर सुखद ऐसे तरीके इजाद किए हैं जो सचमुच हमें एक नूतन दिशा प्रदान करते हैं। भ्राता सुशील चंद्रा जी।
थैंक यू रूपेश भाई। गुड आफ्टरनून एंड ओम शांति एवरीवन। आई एम श्योर जितना रूपेश भाई ने ऑलरेडी एक भूमिका बहुत अच्छे से बता दी है टॉपिक की, तो शायद साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ लिंक करके किस तरीके से चला जाए। बट लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड दूसरा चैलेंज थोड़ा सा मेरे साथ ये भी है कि मेरे जो साथी वक्तागण हैं वो भी हमारे डिफेंस रिसर्च से हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि डिफेंस वाले पार्ट को वो लोग जो कि बहुत अच्छे से आपके सामने शेयर करेंगे उसको मैं छोड़ूंगा। सो विद दैट, जैसा कि टॉपिक में क्लियर है कि हाउ द साइंटिफिक माइंडसेट, वी कैन सी बोथ वेज कि हम साइंटिफिक माइंडसेट से विकसित भारत को कैसे देखते हैं, या विकसित भारत बनाने के लिए हमारा साइंटिफिक माइंडसेट क्या होना चाहिए। दैट्स व्हाई यू नो अबाउट इट इज गोइंग ऑन 18th SIR कॉन्फ्रेंस, 18वीं है, और मुझे याद है हमारे पुराने डीजी हुआ करते थे डॉक्टर मंडल, उन्होंने एक दफे पूछा था कि आपका जो टॉपिक का नाम है SIR स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च, वेदर इट इज स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च और रिसर्च इन स्पिरिचुअलिटी, सो वी ट्राई टू कवर बोथ इन दैट। सो कमिंग विद दैट, हम जो विकसित भारत को नॉर्मली साइंटिफिक कम्युनिटी में देखते हैं, वन ऑफ द मेजर डायमेंशन विच मोस्ट ऑफ अस नॉर्मली अंडरस्टैंड वो होता है कि हम लोग इंफ्रा के हिसाब से समझते हैं। इंफ्रा में कुछ भी हम ले सकते हैं, वेदर इट इज एनर्जी, अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, वेदर इट इज ऑल फोर वेज, रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज, उनमें हमारा कितना किस तरीके का विकास हुआ है। इन न केवल अगर हम एक केवल डिपार्टमेंट को ले लें, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर कि हमारे यहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स नाउ इस समय डेवलप हो गए हैं, मेट्रो रेल से पूरा नेटवर्क हमारा पूरा पूरा विकसित हो गया है। आई स्टिल रिमेंबर माई टाइम वेन वी यूज टू बुक आर टिकट्स गोइंग ऑन टू द विंडो, नाउ वी आर एबल टू डू इट एवरीथिंग ऑन अवर टिप्स। सो ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोमेशंस, अब उन ऑटोमेशंस के लिए चाहे हमारी 2G टू 4G टेक्नोलॉजी बोले, नो डाउट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर दैट में इंडिया में ही सैमसंग ने 6G का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दिया है, व्हाइल वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट 5G। इन एडिशन टू दैट देर इज ए स्पेसिफिक डेडिकेटेड टास्क फोर्स, जो थोड़ा सा मेरे बारे में भाई जी ने बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग इन लास्ट 2 decades इन दिस एरिया, बट अब हमारी स्पेसिफिक टास्क फोर्स है और वो मल्टीपल एरियाज में काम कर रही है। मैं थोड़ा सा लास्ट में टच करूंगा इफ द टाइम परमिट्स मी कि AI एजुकेशन में किस तरीके से लेके जा रही है। AI इज इन प्रेजेंट डेट इज बीइंग यूटिलाइज फॉर ऑल द सेक्टर्स, यू नेम इट, यू थिंक अबाउट इट, इट इज बीइंग अप्लाइड, बट इन दैट केस देर इज वन बिग चैलेंज विच आई एम लीविंग इट ऑन टू यू। सोचें जरा, इस पर विचार करें, जिसमें मेरा थोड़ा सा कार्य भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रही है, बढ़ा रही है, या कहीं ना कहीं हम AI पर इतना डिपेंडेंट तो नहीं हो गए हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस डिक्लाइन करना शुरू हो गई है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग Google Maps for traveling anywhere, all of you, in that sense, so I think it's a good welcome by Prakriti also. So, agar hum isko yaad karein ki agar Google Maps jab nahi tha, tab bhi hum log apne mitron ke ghar jaya karte the, how to have the perfect balance between our capabilities and utilizing the technological capabilities. If we are able to perfectly have the balance, agar hum unko use karte hue, I have been saying 3 words, we all should be tech savvy, we should not be tech dependent, and we should never be tech slave. Mujhe ummeed hai aap sabhi log isko samajh rahe honge ki hum mein se kitne log third wale column mein hain. To agar hum AI ko use kar rahe hain to wonderful hai, augmented reality, virtual reality ko agar hum use kar rahe hain मेटावर्स का, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर के हम लोगों के यहां ट्विन डाटा सेट इज ऑलरेडी बींग यूज, कि इन दैट केस वॉट एवर, इन केस इफ यू आर डिजाइनिंग ए टर्बाइन, और पूरी पूरी टर्बाइन को डिजाइन करने के लिए अगर हम VR/AR में रियल टाइम में IoT के बेस पे डाटा लेते हुए डाटा विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी करते हुए वी आर एबल टू प्रेडिक्ट कि इस टर्बाइन में आगे आने वाले इतने समय बाद प्रॉब्लम आ सकती है, तो हाउ टू डू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर इन दैट. नाउ कमिंग टू ए डिफरेंट साइंटिफिक डायमेंशंस ऑफ मल्टीपल यूजेस. नो डाउट आई एम गोइंग ऑन थर्ड स्लाइड लेटर, बट लेट मी टच वन मोर टॉपिक. कोविड के बाद में हम लोग शायद हेल्थ पे भी उतना बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बट हेल्थ पे कितना कॉन्शियस हुए उस पर भी मेरा एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए विचार है. आर वी यूटिलाइजिंग स्टिल बॉदरिंग अबाउट अवर फिजिकल हेल्थ? क्या कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ को लेकर थी? बिकॉज मेनी ऑफ द केसेस विच हैपेंड इन केस ऑफ ए सेकेंड टाइम, आई एम श्योर आप लोगों को सबको ज्ञात होगा, उसमें बहुत बड़ा प्रकोप डर का था. तो इन एडिशन टू यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी ओनली इन ए पॉजिटिव वे इज क्वाइट अ बिग चैलेंज. बिकॉज अर्लियर अगर हमको कोई भी घटना होने के बाद में उसका जो प्रसार या उसका कम्युनिकेशन, जिसको कई दफे एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में घंटों लगते थे, नाउ इट टेक्स मिली सेकेंड्स एंड एवरीबडी कम्स टू नो. एंड बिकॉज ऑफ मेनी टाइम्स कमिंग रिपीटेटिव न्यूज रिलेटेड टू दैट, इज इट क्रिएटिंग अ फियर इन अस और आर वी ट्राइंग टू बी प्रिकॉशियस रिलेटेड टू दैट? सो दैट ऑल्सो इज पर्टिकुलरली क्वेश्चन. बट मेनी ऑफ द थिंग्स जो पुराने टाइम में शायद संभव नहीं थी, मैं एआई का हेल्थ में और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल थर्मल इमेजिंग टू बी यूटिलाइज फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एआई, इट विल बिकम ए बून फॉर द कंप्लीट वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर इंडिया. एंड न केवल ये एक टूल और टेक्निक ऐसी होगी जो कि आसान बल्कि नुकसानदायक भी नहीं होगी. सो इन दैट केस हेल्थ वी आर अप्लाइंग मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट. मैं इसमें भी एक टॉपिक को एजुकेशन, बिकॉज नाउ आई एम डीन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, सो आई विल ट्राई टू टच अपॉन ऑन एजुकेशन पार्ट. अगेन टचिंग द वन टेक्नोलॉजी, मुझे उम्मीद है सबको पता है कि कोविड के टाइम में छोटे से बच्चे तक ने मोबाइल से अपनी पढ़ाई की है, और आज के टाइम में इफ नॉट इन स्कूल एजुकेशन मेनली स्पेशली इन केस ऑफ हायर एजुकेशन, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग एआई. तो एआई आ रहा है तो एआई तो यूज करना चाहिए, बट आर वी यूजिंग इट और आर वी कंप्रोमाइजिंग ऑन इट? मैं उसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा उस लाइन को. हम लोगों को याद है कि जब हम लोगों को एक एप्लीकेशन लिया जाए कि अगर आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी है, सो वी यूज टू थिंक व्हाट इज द एड्रेस टू बी रिटन. अगर हिंदी में लिखनी है तो महोदय है, महोदया है, एंड व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट विच वी हैव टू राइट, व्हाट इज द ग्रामर, व्हाट इज द इंग्लिश हैज टू बी देन. एंड इन टूडेज डेट ए यंगर चाइल्ड ऑल्सो व्हाट ही इज डूइंग इट, ही इज गिविंग ए सिंपल प्रॉम्प्ट and the whole application is written. I don't know whether he is perfectly aware about grammar, he is perfectly aware about the spelling part of it, but ye sab bhi compromise hone se zyada sabse bada challenge jo mera chhota sa karya kshetra raha hai, cognitive abilities, bauddhik kshamtaen. To kya hamari thinking abilities, kya hamari visualization capabilities, wo sab cheez to kahin compromise nahi karti ja rahi hai. Last week only I was asking one of my student, do you feel it that we should change our education system as per industry 4.0 or society 5.0? मतलब जो इंडस्ट्री का फोर्थ रिवोल्यूशन आ रहा है उसके बाद में हमको एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, या पहले एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए उसके बाद में इंडस्ट्री 4.0 या 5.0 आना चाहिए? आई एम श्योर बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड सो यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर, बट मेरे यहां जो स्कूल जो बच्चों का जवाब था, इट वॉज बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स, बट आई स्टिल ट्राई टू कन्वे वन मैसेज कि अगर हम एजुकेशन पहले प्लान करेंगे एंड देन इन केस इफ इंडस्ट्री 4.0 कम्स, that means we are not the follower, we are the leader. But if it happens reverse, दैट मीन्स स्टिल हम जो विकसित भारत बोल रहे हैं, क्या हम विकासशील भारत हैं या विकसित भारत हैं? सो विकसित भारत में वो तभी संभव है जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी से आगे चलेगी। टेक्नोलॉजी को उसको बताने में, यूज करने में, इफ द एजुकेशन इज स्टारफुली यूटिलाइजिंग इट, देन ओनली देन वी कैन कन्वर्ट आवर कंट्री इनटू द फॉर्म ऑफ ए विकसित भारत। कमिंग टू द लास्ट डायमेंशन, एज रूपेश भाई ऑल्सो सेड कि मैं मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं 24 वर्षों से स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंटिफिक माइंडसेट, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ DRDO दैट टाइम। बट द चैलेंज इज कैन वी टेक बोथ द थिंग्स टूगेदर, आंसर इज एब्सोल्यूट यस, एंड कैन वी टेक बोथ द डायमेंशन एंड देन डू द रिसर्च पार्ट, बिकॉज स्पार्क हमारा रिसर्च के ऊपर एम्फोसाइज करता है। उदाहरण के तौर पे मैं नेगेटिव कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा, बट फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक केम, आई डोंट नो हाउ मच ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च वॉज देयर बिहाइंड ऑन दैट एंड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड हाउ मेनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज देयर ऑन टू इट, बट देन वी डिड वी रियलाइज हाउ डिड वी डू दैट एंड इफ यू कुड हैव रियलाइज द काइंड ऑफ चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग इट कुड नॉट हैव कम। But there are again further solution on this platform itself. One nanotechnologist, she came and then she shared how the nanotechnology can be utilized for converting plastic waste to wax, starting from medical grade to candle grade without giving any kinds of pollution, whether it is solid, liquid or air. So in that case, we can try to work on those lines which are actually, as Rupesh Bhai has already said it, ki wo benefit to the humanity jaye rather than harmful to the humanity. So in case hum log kisi bhi dimensions mein hain, chahe wo education mein hain, chahe wo research mein hain, research mein again, whether we are doing the technological research, agriculture research or the economical research, if we are able to have the spiritual mindset, तो हमारी जो रिसर्च का जो आउटकम आता है, उम्मीद है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत यूजफुल होता है। लास्ट फ्यू लाइंस आई विल ट्राई टू कवर ऑन, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं तो जो हमारा आप लोगों का भी दो दिन से बहुत अच्छे से एक्सपोजर भी हुआ होगा और उसके नाते पता भी होगा, हमारा एक स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे पहला बेनिफिट स्वयं में आता है, और जैसे ही स्वयं में आता है सो स्वयं में ना केवल हमारी बौद्धिक क्षमताओं में, ना केवल हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज में, बल्कि जो अब के एजुकेशन सिस्टम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इन्वॉल्व हो गया है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। सो इन दैट केस न केवल हम टेक्निकली और एजुकेशनली बेहतर होते हैं, बट एक समाज के अच्छे प्राणी के रूप में हम कन्वर्ट होते हैं, उस तरीके से हमारे एजुकेशन में कन्वर्ट आता है। सो सब पहला पार्ट कि हम समाज के अच्छे प्राणी बनते हैं। द मोमेंट इफ आई बिकम बेटर, देन इन दैट केस चाहे वो मेरे कोलीग्स हैं, चाहे वो मेरा परिवार है और चाहे मेरे सोसाइटी के साथीगण हैं, इट लीव्स ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन देम ऑल्सो। एंड कब मेरा बदलाव वो समाज में बदलाव लाने में सक्षम हो जाता है, वी डोंट इवन कम टू नो। सो दैट्स हाउ वी ट्राई, वी कैन एंड वी शुड टेक ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च फील्ड्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्फ एंड देन फाइनली टू द सोसाइटी एंड फाइनली टू द होल। इन द एंड बिकॉज हमारे एक भाई जगदीश भाई रहे हैं, वो कर्णधार हुआ करते हैं, हुआ करते थे, मीन्स हम लोग बोलते हैं शटल में, सूक्ष्म में आज भी हमारे साथ हैं जगदीश भाई, और थोड़ा सा मेरा सौभाग्य भी रहा कि उनके साथ में इंटरेक्शन करने का आज से 24 वर्ष पहले, 23 वर्ष पहले मौका भी मिला। तो विद हिज सेइंग आई विल स्टॉप इट हियर, ऑल साइंटिफिक exploration aims at discovering certain secrets behind the forces and phenomena of nature. But because of the limitations of its scope and methods of exploration, it did not explore the nature of thought. So, we are the creator of our own thought, and in case if we are able to firstly see our thoughts, regulate our thoughts, and create the positive mindset and positive thoughts. So then, and consciousness, which are primary reality. Because I have been working in the field of virtual reality and augmented reality also. So thus an important area of reality was left unexplained by the science, and therefore man could have complete or total picture of reality. So with that, I'll conclude. If we are with the self, we are connected with the whole world. But if we are well connected with the self, then we can be excellently connected with the profession, and we can work beautiful for the society. Thank you. Om Shanti.
Bahut bahut shukriya Bhrata Dr. Sushil Chandra ji. Hamare beech Bhrata Supratim Ray ji bhi pahunch chuke hain. Hum zordar kartal dhwani se Dr. Supratim Ray ji ka स्वागत करते हैं. और बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा कि बैज और बुके से आदरणीय हमारे डॉक्टर सुप्रतिम रे जी का स्वागत करें. दूर से हमारे बीच जो ज्ञान धन आपने अर्जित किया है उसे हम सबके बीच बांटने के लिए पधारे हैं. और जैसा मैं प्रारंभ में भी कह रहा था कि आप सभी विद्वान वक्तागण, पूरे जीवन जो आपने अनुभव किया है उसका निचोड़ हम सबके सम्मुख रख रहे हैं. जैसे भ्राता सुशील चंद्रा जी ने भी एक बात बहुत गहराई से कही कि हम जो सेल्फ है वो पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है. मैं केवल मैं नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कायनात से, सृष्टि से जुड़ा हुआ हूं. इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं, भ्राता जी का अभिनंदन हो रहा है, हम जोरदार तालियों से बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं आज के इस सुंदर से सत्र में. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो ठीक हूं, मेरा पड़ोसी ठीक है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ठीक हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं नहीं कह सकता. क्योंकि पूरी सृष्टि एक एक ईंट से, हम सब एक एक ईंटों से मिलकर के बनी हुई है, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. इसे आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता. और हमारी पुरातन संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र पुराण न केवल यही आध्यात्मिक ज्ञान देते रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझाते रहे हैं कि पूरी सृष्टि, पूरी इकोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसीलिए जियो और जीने दो, ये हमारी परंपरा रही है. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि समाज में, संसार में कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, फर्क पड़ता है. यदि बाहर फर्क पड़ेगा तो हम उससे अप्रभावित रहें, ऐसा कतई नहीं हो सकता. इसीलिए कोई करे या ना करे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से हमें यह संकल्प लेकर जरूर जाना है कि मुझे इसकी शुरुआत करनी है. यदि मैं शुरुआत करूंगा तो मुझे देख करके दूसरे भी इस चीज की शुरुआत करेंगे, और इस प्रकार दीप से दीप जलता चलेगा. राइट, हम ऐसा करेंगे ना. कोई इस प्रकार के विचार तो नहीं रखता कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा. यदि मैं कुछ अच्छा सोच लेता हूं तो मेरे एक के सोच लेने से क्या हो जाएगा. नहीं, एक व्यक्ति ही पूरे ही लोगों को तब्दील कर देता है, लोगों के विचारों को तब्दील कर देता है. यदि मैं अपने विचारों में दृढ़ हूं, यदि मैं एक सुंदर शुरुआत करता हूं, तो मुझे देखकर और भी परिवर्तित अवश्य होते हैं. इसीलिए मैं एक ऐसे परिवर्तन की ओर अपने आप को लिए चलूं जो परिवर्तन सकारात्मक है और राष्ट्र को भी विकसित राष्ट्र बनाने वाला है. शिक्षा की बात भी भ्राता जी कर रहे थे, तो एक बात ख्याल आ रही थी कि आज हम शिक्षित तो कर रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन शिक्षित के साथ साथ दीक्षित करने की भी आवश्यकता है. शायद हम दीक्षित नहीं कर पा रहे हैं, और वो दीक्षित होना ही स्पिरिचुअलिटी है. हम क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं लेकिन क्वालिटीज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. इन दोनों की साथ साथ आवश्यकता है, शिक्षित भी हों साथ साथ दीक्षित भी हों, क्वालिफिकेशन भी दी जाए और साथ साथ क्वालिटीज भी डेवलप हों, तभी हम दोनों का अर्थात भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों का साथ साथ विकास कर पाएंगे। और यही आज के सत्र का सुंदर भाव है, पूरे कॉन्फ्रेंस का भी यही लक्ष्य और उद्देश्य है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर डी रत्ना जी को, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के। डॉक्टर डी रत्ना अटेंड हिज एमएससी इन केमिस्ट्री, एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अ डॉक्टरेट इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ही वॉज अ विजिटिंग साइंटिस्ट टू मोनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर डी रत्ना जी से कि आप आज के इस सुंदर विषय पर अपने सुंदर वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। डॉक्टर डी रत्ना जी, जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। सो डिग्निटरीज ऑन द डायस, डिग्निटरीज ऑफ द डायस, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, very good evening to all of you. So at the outset I would like to thank Rupesh bhai for nice introduction, and also I would like to thank the organizers, especially Professor Nagre, Alka Didi and BK Sikant bhai for inviting me to participate in this conference. It's indeed a great pleasure and honor for me to be amongst all of you here in this holy place. I also congratulate and thank the organizers for organizing this important conference and giving a platform to all of you coming from different background, from different parts of our country, and you will get the opportunity to experience the spirituality in this holy place. So I would like to request you to give a big round of applause for the organizers. Today we are going to discuss here the scientific mindset in the mirror of Viksit Bharat. So if I take the topic like this scientific mindset, as Sushil Chandra you are telling, it can be taken in two different ways. So scientific mindset required to achieve the Viksit Bharat, then it's my belief, or I believe, that the scientific mindset required for to achieve the Viksit Bharat, for that we have to complement our scientific mindset with the spirituality. And because always spirituality complements the science and technology. So, and correct scientific, for that scientific mindset will help us to achieve the Viksit Bharat. But if you see the many in scientific community or even people with scientific mind sometimes feel that yes, spirituality is not that much required, because the reason is that because of the scientific discovery and technological advances sometimes makes people arrogant enough to reject spirituality. So सोचते हैं जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सब मिल जाएगा तो स्पिरिचुअलिटी का क्या जरूरत। But we must understand the limitation of science. Actually, I am from the chemistry background and now working on, basically now specialized in polymer science and technology. But from the chemistry perspective, if I look at a human body, living human body and a dead body, then you find all the chemicals present in the living human body and dead body are same. The dead body mein koi chemicals ka koi kami nahi hai jo living body mein hai. But the dead body doesn't have any life. So, and science, we do not have any answer in science, that other science cannot give any answers for this also. But you can get answer from the spirituality. If you ask, who am I? That jo hum last 3 days we are discussing, main kaun hu? If you ask, and through realize, through spirituality, you will automatically get the answer. So, if I think about the spiritual leaders, the first name come to my mind is Swami Vivekananda. And when Swami Vivekananda started teaching Vedanta in the Western countries, that time the top world class scientists, they used to participate in his discourse, hours together. The scientists were so busy that they were hesitant to give time for their food also. But still they were listening the very minutely with the discourse of Swami Vivekananda. And the theory of Vedanta, what Swami Vivekananda taught, basically we have seen, it has formed the basis of modern quantum physics. So, spirituality if you see the history or also, that spirituality always, they are interlinked, the science and spirituality. So whether it is science and spirituality, we need, for pursue it, we need focus, concentration, and for that we have to control your mind. And as you know, our mind is so restless, it always flitting over different thoughts, then how to control it? As you know, it's very difficult. And if you read Bhagavad Gita, Arjuna asks Lord Krishna, Chanchalanghi mana Krishna pramathi balabhadridam, tasvahang nigrahang manna bayoribo suduskaram. That means, just like keeping air in the fist, it is difficult to control the mind. So Arjuna asking Lord Krishna how to control the mind. Then Lord Krishna said, yes, it is difficult. But also he said, abhasena tu kaunteya vairagyana chagrihate. That means it is possible. Of course it is difficult, but it is possible by the practices and detachment. That is what the practice in Brahma Kumari last 3 days we are learning. That is the Raj Yoga meditation. We are running here, and this this university, Aishwaryik University in Brahma Kumari, they have already demonstrated. And our Sushil Sharmaji also is very much connected. He has done a lot of research. They have demonstrated that with the help of this Raj Yoga meditation, it is possible to enhance, upgrade constantly. Your consciousness, and to increase the concentration and your mental power. Okay. So now coming to the topic of the mindset, the scientific mindset in the, previous speakers have already pointed out, that we have done a lot of advances, progress in the last few decades in the science and technology, be it in pharma, be it in defense, aerospace, or medicine, all field we have really done a lot of considerable technical advancement. But so far what we have done, that in the technology we have concentrated on technology growth, we have not given that due consideration for the sustainability. We have not given enough thought for the protections of the climate, protection of ecosystems. So, you see we are keeping on burning carbon to get our energy. We are burning diesel, petrol, all fossil fuels, which produces carbon dioxide. And at the same time, we are doing deforestation for industrial development or industrial progress. So today, the situation is that we do not have enough trees which can convert the carbon dioxide to oxygen, which we need for our breathing. The fossil fuel is depleting very fast, and in the few decades we are going to suffer very much, stringent fuel crisis. The way we are using plastics for our comfort, days are not far. We'll see that our oceans are, we have in our oceans we have more plastics than fishes. So that in you are considering the previous or session is change. We have to change our mindset. We have to technology is good. We have to go for sustainability oriented technology instead of growth oriented technology. We have to go for sustainability oriented technology development, and we have to and also you have to bring more innovation in the research. Actually, it was pointed out some of our Didi in the some lectures that we should in the research some more. It should be more innovations like that. We have to bring more innovation. For example, we have to develop energy systems which will give us energy without polluting the atmosphere, which will not create the carbon dioxide. Which in our laboratory we are working devices, energy devices, which is called fuel cell, where hydrogen, oxygen will react and will give you energy. So there will no carbon dioxide will be produced. So that we will get the energy that is, and we burn carbon dioxide is produced, so that pollution will not be there. We are working in our laboratory some materials which will absorb carbon dioxide. So like when our defense systems in the submarines, when our defense personnel, naval personnel, when they breathe carbon dioxide are produced, so they cannot continuously sail it. For that, we have developed some material which will absorb carbon dioxide. Even we are working for the material which will absorb water from the moisture, from the, the humidity is very high, so it can absorb water, so it can get water. So probably the sustainability oriented research, if we do, and I hope that with this we can really achieve our Viksit Bharat, and also I am sure that this conference also will help to achieve these objectives. With this, I thank you all for your patient hearing. Thank you very much.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवव्रत रत्ना जी. बहुत गहरी और सुंदर सी बातें, वही कि अध्यात्म और विज्ञान का संगम ही एक सुखद भविष्य की ओर हम सबको लिए चलेगा, और उसके लिए ही हम सबका अब प्रयास हो. एक और आपने ध्यान खिंचवाया, जिस पर लगातार आपका ध्यान खिंचवाया ही जा रहा है, कि मन जितना सशक्त होगा, सकारात्मक होगा, जितना उन्नत होगा, उतना ही बाह्य तौर पर हमारी रिसर्च में भी वही गहराई आएगी, और साथ ही मानव कल्याणकारी कार्यों को हम कर पाएंगे. किसी महापुरुष से पूछा गया कि यदि आपको पेड़ काटने के लिए, एग्जाम्पल ही था, कुल्हाड़ी दी जाए तो पहले आप क्या करेंगे, एक घंटे का वक्त दिया जाए तो. उन्होंने कहा पहले 40 मिनट 50 मिनट तो मैं कुल्हाड़ी में धार ही लगाऊंगा, क्योंकि यदि धार होगी कुल्हाड़ी में तभी मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट पाऊंगा. खैर, यहां हम पेड़ काटने की बात नहीं, लेकिन उस चीज की बात कर रहे हैं कि जितनी यहां शार्पनेस होगी, जितनी यहां गहराई होगी, जितनी यहां क्लेरिटी होगी, स्पष्टता होगी, मानव के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण होगी, उतना ही हम राष्ट्र को, विश्व को विकसित कर पाएंगे, श्रेष्ठ बना पाएंगे. इन्हीं सुंदर भावों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर सुप्रतिम रे जी की ओर. राता जी को मैं आमंत्रित करता हूं. आप प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हमारे बीच पधारी हैं, सीनियर फेलो हैं डीबीटी वेलकम इंडियन अलायंस. आप रिसर्च इंटरेस्ट आपके हैं विजन, अटेंशन और मेडिटेशन, ब्रेन स्टिमुलेशन, इन सब में आपके बहुत ज्यादा रुचि है. रिसर्च की फील्ड जो है आपके, आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है, और साथ ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी की है जॉन्स हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर से. आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी शुरुआत की, और 2023 से आप पूरी तरह एक अच्छे प्रसिद्ध प्रोफेसर, लोकप्रिय प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवाएं बच्चों को प्रदान कर रहे हैं. शिक्षित के साथ दीक्षित करने की जो बात मैंने कही थी, अनेक अवार्ड्स आपको आपके कार्यों के लिए प्रदान किए गए हैं. बहुत लंबी लिस्ट है, और हमारी कामना है कि अवार्ड्स आपको और भी मिलते चले आपके सुंदर कार्यों के लिए. आप रिव्यूअर हैं बहुत सारी जर्नल्स के, जिनमें से कुछ हैं ई लाइफ, ई न्यूरो, यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस,
आदि आदि इत्यादि। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर सुप्रतिम रे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय डॉक्टर सुप्रतिम रे जी, हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे अवसर देने के लिए। आज मैं हिंदी में कोशिश करूंगा बोलने की, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मैं पहली बार आ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। तो मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, तो मैं ब्रेन स्टडी करता हूँ। मेडिटेशन कैसे ब्रेन को चेंज करती है, यह प्रश्न मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है बहुत सालों से, और अब नई नई शुरुआत है मेरी इस विषय पर कुछ समझने के लिए। लगभग 2 साल पहले मैंने इस पे शुरुआत की, और पहला जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो ब्रह्म कुमारी के मेडिटेटर्स के ऊपर ही था। तो आज मैं उस विषय में हमारे जो फर्स्ट रिजल्ट्स हैं, जो फर्स्ट फाइंडिंग्स हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो मेरी लैब ईईजी स्टडी करती है, तो आप इलेक्ट्रोड्स लेके बस सर पे ऐसे लगा दीजिए, मेटल के इलेक्ट्रोड्स, थोड़ा सा जेल लगा के, तो एक सिग्नल आता है जो हम स्टडी करते हैं। हमारा ब्रेन वो सिग्नल जेनरेट करता है, और आश्चर्य की बात यह है कि अक्सर वो सिग्नल जो है ऐसे ऑसिलेट करता है, वो ऐसे ऊपर नीचे होता है, जिसको एक वेव बोलते हैं, तरंग। तो जैसे अगर आप इस स्क्रीन पे अभी देखेंगे तो यह पहली वेव थी जो डिस्कवर की गई थी। ये एक सेकंड में 10 बार, लगभग 10 बार ऊपर नीचे जाती है, इसको बोलते हैं अल्फा वेव। नाउ बड़ी आश्चर्य की बात है, ज्यादातर लोगों में ये अल्फा वेव दिखती है। आप सर में अगर पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगाएं और खाली बोलिए आप आंख बंद कर लो, आप जैसे ही आंख बंद करोगे देखेंगे ये वेव आ गई। वो स्क्रीन, मतलब हम जो कंप्यूटर पे देखते हैं सिग्नल, ऐसे ऐसे होगा, आंख खोलेंगे तो वो वेव चली जाएगी, फिर आंख बंद करेंगे वापस आ जाएगी। तो आप कितने शांत हैं, आपका ब्रेन कितना इन सम सेंस इसको आइडलिंग रिदम बोलते हैं। जब आपका ब्रेन कुछ काम करने लगता है तो वो रिदम चली जाती है, जब आप शांत रहते हैं तो ये रिदम बहुत तेज होती है। तो इसको बोलते हैं अल्फा वेव। ये बहुत सालों से बहुत लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अल्फा की तरह बहुत सारी अलग अलग वेव्स होती हैं। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो एक स्लोअर वेव होती है जिसको बोलते हैं डेल्टा वेव। तो हम डेल्टा वेव देखते हैं जब कोई सो रहा है। अल्फा, जैसे मैंने कहा, रिलैक्स्ड एंड रिफ्लेक्टिव स्टेट के ऊपर की तरफ आती है। हमारी लैब जो एक वेव स्टडी करती है उसको बोलते हैं गामा वेव। तो मेरे पूरा जो रिसर्च है वो एक्चुअली इस एक वेव के ऊपर ही है, गामा वेव बोलते हैं। और हमको ये बहुत पसंद है क्योंकि ये वेव हाई लेवल कॉग्निशन से रिलेटेड है। जो लोग बहुत साल से मेडिटेट कर रहे हैं उनमें ये गामा वेव तेज होती है। अगर आप किसी चीज पे ध्यान लगाएं, जब आप ध्यान लगा रहे हो तो ये वेव तेज हो जाएगी, ये ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगी। तो हम सोचते हैं कि ये गामा वेव एक तरीका है हमको समझने के लिए कि हाई लेवल कॉग्निशन ब्रेन कैसे मीडिएट करता है। जब हम एक अलग लेवल पे पहुंच गए कॉन्शियसनेस के, तो क्या चेंज हो रहे हैं हमारे दिमाग में। ये गामा वेव एक तरह से हम एक विंडो है वो समझने के लिए, तो इसीलिए हम वो स्टडी करना चाहते हैं, और उसके बारे में आज की हम जो रिसर्च किए हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, ये मैंने जो स्टडी पिक्चर दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जो बाद में मंक बन गए और अब वो दलाई लामा के साथ हर जगह जाते हैं। उनका नाम मैथ्यू रिकार्ड है, और उनकी गामा वेव दुनिया में सबसे, मतलब ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है ऑब्वियसली, तो थोड़ा अलग, मतलब ऐसे ही लिखा है कि लिटरेचर में किसी का गामा वेव इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इनका था। जब वो कंपैशन पे मेडिटेट किए तो वो उनकी गामा वेव बड़ी स्ट्रांग हो गई। तो हमको लगा कि भाई हमको भी गामा वेव स्टडी करनी चाहिए, तो वो रिसर्च के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्योंकि थोड़े स्लाइड्स ऐसे दिखाऊंगा जो हम जिस तरह से सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूं वो मीन क्या करती है। तो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिग्नल है जो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। ये जो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे ये टाइम है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये इस समय एक वेव है। तो इसको हम एक अलग टाइप के तरीके से दिखाते हैं जिसमें इस सिग्नल में जितनी पावर है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वो हम प्लॉट करते हैं। इसको बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ज्यादा डिटेल्स, मैथमेटिकल डिटेल्स यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, बस ये आप देखिए कि जब भी ये वेव आती है 10 हर्ट्ज पे तो एक ऐसा पीक आता है 10 हर्ट्ज पे। तो ये अल्फा वेव को हम दिखा रहे हैं अलग एक तरीके से। एक और तरीके से मैं जो दिखाऊंगा उसमें आप पावर देखेंगे सिग्नल की कलर के हिसाब से। तो लाल मतलब बहुत ज्यादा पावर है, और ये आप देखिए 10 हर्ट्ज पे है, 15 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज पे नहीं है, सिर्फ 10 हर्ट्ज पे है। तो ये भी एक तरीका है अल्फा वेव दिखाने का। हमेशा ब्रेन वेव्स ऐसी नहीं होती, कभी कभी जब आपके जैसे आंखें खुली हो, आप बहुत कुछ मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हो तो अल्फा वेव चली जाती है, तो उस समय सिग्नल ऐसा दिखता है, उसमें कोई ऐसा शार्प बंप नहीं आता। तो मैं आपको पहले यह दिखाऊंगा कि इन जनरल जब एक पर्सन मेडिटेट करता है तो ब्रेन सिग्नल कैसे चेंज होता है। तो ये देखिए, ये एक स्टडी कुछ साल पहले की गई थी, हमारी स्टडी नहीं है, किसी और ने की है, जिन्होंने चार तरह के ग्रुप्स में ईईजी रिकॉर्ड की। एक ग्रुप था जो विपासना मेडिटेशन करते थे, एक ईशा शून्य, एक हिमालयन योगा ट्रेडिशन, और चौथा ये जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स जिन्होंने लॉन्ग मेडिटेशन नहीं किया है। अब आप जो ये प्लॉट देख रहे हैं, ये जो मैं 20 हर्ट्ज तक दिखा रहा हूं, ये जो बम्प आप देख रहे हैं ये है अल्फा, जो मैंने पहले बताई थी। और देखिए ये विपासना मेडिटेटर्स की अल्फा ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी जो दो मेडिटेशन तरीके हैं और कंट्रोल सब्जेक्ट्स उनका थोड़ा कम है, ये ग्रीन थोड़ा ऊपर है, बट ये अल्फा की बात हो गई। ये बहुत सालों से बहुत लोग देख रहे हैं। ये देखिए गामा वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी में है, 60-80 हर्ट्ज जो गामा वेव है उसका प्लॉट देखिए। तो देखिए कंट्रोल्स का ये नीचे है और बाकी तीनों मेडिटेटर्स का थोड़ा ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि उनमें ज्यादा गामा पावर है, बट ये भी देखिए कि यहां कोई ऐसा बंप नहीं है जो अल्फा के रेंज में है, मतलब ये एक ऑसिलेशन नहीं है, ये एक ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज में इंक्रीज हुआ है। तो हमने ये देखा और बोला कि ये तो अजीब बात है, गामा में भी बंप होना चाहिए, हम तो यही सीखते आए हैं, तो क्या क्या डिफरेंस है। अब गामा ऑसिलेशंस की जब बात आती है, ऐसा संभव है कि गामा फ्रीक्वेंसीज में ऐसा अल्फा की तरह बंप आए, बट वो ऐसे साधारण तरीके से नहीं आती, उसके लिए कुछ थोड़ी मेहनत करनी होती है। क्या मेहनत करते हैं वो हमारे लैब में और कई लैब दुनिया में की जाती है, और वो बहुत साधारण तरीका है, सिंपल प्रोसीजर है। आपको खाली ऐसी इमेजेस जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ऐसी इमेजेस को देखना है बस। जब आपका आप ऐसी इमेजेस जो ये धारी सफेद और काली धारियां जिसको ग्रेटिंग बोलते हैं, ये ग्रेटिंग जब आप देखेंगे तो आपका ब्रेन गामा वेव तैयार करेगा। जितनी देर आप देखेंगे उतनी देर, अभी आप स्टिमुलस हटा दीजिए, गामा वेव खत्म, फिर से आप ये आपको दिखाऊं तो आपका ब्रेन गामा वेव दिखाएगा। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये आप एनिमल्स में भी अगर उनको दिखाएंगे, कैट्स में, माउस, मंकी, उनके वेव भी गामा वेव तैयार करते हैं, और वो एक बंप की तरह दिखता है, और वो ऐसा एक प्लॉट आता है। ये अगेन दिस इज टाइम, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस रेड लाइन इज गामा। तो बाकी चीजें आप मतलब अभी इसमें बहुत है इन प्लॉट्स में, बट आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि जब मैं 800 मिलीसेकंड के लिए, अब एक सेकंड के लिए स्टिमुलस दिखा रहा हूं, ये ग्रेटिंग दिखा रहा हूं, तो आपका ब्रेन ये गामा वेव तैयार कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, गामा वेव तैयार कर रहा है, पर मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या चीज दिखाती है? तो आई स्किप दीज, एक्चुअली बड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया था, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं थोड़ी। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं कि जिससे पता चलता ही है कि ये वेव्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं गामा वेव्स, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये सब स्किप करूंगा, यहां पे आते हैं। तो हमने एक स्टडी की कुछ सालों पहले, ये भी छोड़ देता हूं, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया जो 50 वर्ष से ऊपर उनकी आयु थी, 50 से 90 की उम्र के बीच में। तो वो हमारी लैब में आए और ऐसे करके बैठे एक स्क्रीन के सामने, और हमारे पास ये एक आई ट्रैकर है नीचे, जो हम तो हमको पता रहता है कि वो कब देख रहे हैं, कब कहीं और देख रहे हैं, कब आंखें बंद कर रहे हैं, वो सब हम आई ट्रैकर से पता कर लेते हैं। और उनको हमने खाली ये इमेजेस दिखाई। तो आप सोचिए, ये बहुत सादा सिंपल टास्क है, एक पर्सन आएगा स्क्रीन के सामने बैठेगा, हम उनको ये इमेजेस दिखाएंगे और बस थोड़ी देर देखने के बाद एक्सपेरिमेंट खत्म, फिर वो अपना घर जाएंगे और हम बैठ के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इस पर्सन का गामा वेव कैसा है। तो हमने लगभग 350 लोगों से रिकॉर्ड किया, 350 ईईजी सेशंस किए, 280 के लगभग लोगों से। और बाद में हमको मालूम चला कि उनमें से ज्यादातर लोग तो हेल्दी थे, बट कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर था, उनको फ्यूचर में अल्जाइमर्स डिजीज होने वाला था। तो उसको बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एक स्टेट है कि अभी तक थोड़ा कॉग्निशन थोड़ा इम्पेयर हो रहा है, बट फ्यूचर में अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का हम हिस्सा थे। बाकी लोग जो बहुत सारे क्लिनिशियंस थे, उन्होंने ये सब आइडेंटिफाई किया था, किसको कौन हेल्दी है, किसको एमसीआई हुआ है, एंड सो ऑन। तो हम पहले सिर्फ हेल्दी लोगों को देखें और पूछें कि जैसे जैसे आप एज कर रहे हैं, अभी आप जवान हैं, फिर आप मिडल एज्ड हुए, फिर आप बूढ़े हो गए, मान लीजिए आप हेल्दी हैं पर आपकी एज बढ़ रही है, तो ये गामा वेव कैसे चेंज होगी? तो ये देखिए, ये आप, ये सेम चीज है, ये जो ऑरेंजिश पैटर्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये गामा दिखाती है। ऊपर मेल्स हैं, नीचे फीमेल्स हैं। देखिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों में गामा वेव्स काफी स्ट्रांग है, फीमेल्स में एक्चुअली ज्यादा स्ट्रांग होती है मेल्स के तुलना में, पर ये यंग लोग हैं, 50 साल की उम्र से कम। अब जैसे जैसे आप की उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा? तो ये देखिए, ये हमको एक्चुअली कई साल लगे, ये एक ही प्लॉट में आंसर है, बट ये प्लॉट बनाने में हमको 4 साल लगे। और आप देखिए कि ये जो गामा वेव्स है, जो येलो ऑरेंज जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो इवन व्हेन यू एज इन अ हेल्दी फैशन, गामा वेव्स बिकम वीक, आपका ब्रेन धीमे धीमे कम शक्तिशाली गामा वेव्स तैयार करती है। सो इट हैज एन इफेक्ट, एजिंग एटीन्यूएट्स और सप्रेसेस गामा एक्टिविटी। मोर इंटरेस्टिंगली, हमको इंटरेस्ट था ये जानने के लिए कि अगर आपको एक मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है या आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी गामा वेव्स में कुछ अंतर आएगा कि नहीं। तो हमारे पास लगभग 20 ऐसे लोग थे जिनको आइदर माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट था या अर्ली अल्जाइमर्स डिजीज था। तो उन्हीं की एज के, उन्हीं के जेंडर के हमने हेल्दी कंट्रोल्स लिए, और ये देखिए, ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट था हमारे लिए। हमको दिखाई दिया कि हेल्दी ब्रेन काफी अच्छा गामा वेव जेनरेट करती है, बट अगर आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो ये गामा वेव बहुत वीक हो जाती है। तो ये स्टेटिस्टिकली बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। तो ये एक बहुत इजी एक बायोमार्कर है, एक सॉर्ट ऑफ एक मार्कर ऑफ योर ब्रेन हेल्थ। आप स्क्रीन के सामने एक खाली ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न देख के ये वेव तैयार करते हैं अपने ब्रेन में, और जो अगर आपको कोई ब्रेन मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ प्रॉब्लम है तो ये वेव्स बहुत वीक हो जाती हैं। यही नहीं, अगर आप एक ही पर्सन से दो बार रिकॉर्ड करें तो ये देखिए, ये 20 लोग हैं, आप 20 प्लॉट्स देख रहे हैं, ये 20 लोग हैं, सबके सब स्वस्थ, ये हेल्दी पॉपुलेशन है। सबका गामा सिग्नेचर थोड़ा अलग अलग है। ये देखिए, ये एक है, एक ऐसी वेव आई ऊपर से एक और आके ऐसे नीचे गई, यहां थोड़ा एक फजी सा गामा वेव आया, किसी की दो गामा बैंड्स हैं, किसी का गामा ही नहीं है, अलग अलग वेव पैटर्न है। हमने एक साल बाद उनसे फिर रिकॉर्ड किया, एक साल बाद हमने देखा कि भाई ये गामा वेव चेंज हो गई या सेम है, क्योंकि हो सकता है एक दिन मंदिर से आए हो, अगले दिन अगली बार जब आए हो तब ट्रैफिक में फंस के आए हो, बहुत गुस्से में हो, पर गामा वेव बहुत सिमिलर रहती हैं। इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट ऑफ योर ब्रेन। ये देखिए, जिनका ऐसा एक पैटर्न था सेम पैटर्न फिर से आया, जिनका फजी गामा था उनका फजी गामा आया। तो एक बहुत कंसिस्टेंट पैटर्न है, सबका अलग अलग है पर वो अपने में बहुत कंसिस्टेंट रहता है, और एक मेंटल डिसऑर्डर हुई तो वो कमजोर हो जाती है। और भी थोड़े रिजल्ट्स हैं पर वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं खाली अब इस प्रोजेक्ट पे आता हूं, प्रोजेक्ट ध्यान। तो हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिए ये मेडिटेशन पे रिसर्च बहुत सालों से हो रही है, ईईजी रिसर्च, काफी टॉक्स आपने सुने भी होंगे। उसमें क्या होता है, आप आइदर आप एक मेडिटेटर से ईजी रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो आप उनके कंट्रोल से एक सब्जेक्ट जिन्होंने ईजी जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया, और आप ईजी रिकॉर्ड करते हैं जब वो मेडिटेट कर रहे हैं, और थोड़ा कंट्रोल होता है जब वो खाली आईज ओपन या आईज को क्लोज रखें पर मेडिटेट ना करें, फिर आप देखते हैं क्या डिफरेंस आया। तो ये बहुत सालों से रिसर्च की जा रही है। हमने जो नई चीज ऐड की वो ये गामा प्रोटोकॉल है, बिफोर दे मेडिटेट एंड आफ्टर दे मेडिटेट वी शोड देम दीज ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेटिंग पैटर्न्स। ओके, सो सिंपल ये कि भाई आप मेडिटेशन से पहले आप 5 मिनट स्क्रीन को देखो जिसमें हम आपको ये धारियां दिखाएंगे, मेडिटेशन के बाद आप फिर से ऐसा देखिए। यह चीज आप किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन गामा कैसा है वो आप चेक कर सकते हैं, पर ड्यूरिंग मेडिटेशन आप नहीं कर सकते इन जनरल, क्योंकि मेडिटेशन यूजुअली आंख बंद करके की जाती है। सो दिस इज वेयर एक्चुअली वर्किंग विद ब्रह्म कुमारीज ओपन्ड अ न्यू सॉर्ट ऑफ एवेन्यू फॉर अस, क्योंकि ब्रह्म कुमारीज में सिखाया जाता है कि आप आंख खोल के मेडिटेट करें। तो हमने ब्रह्म कुमारी के मेडिटेटर्स से रिकॉर्डिंग की, और एक बार उनको बोला आंख खुली रख के मेडिटेट कीजिए जब हम आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाएंगे, दिस इज देयर नेटिव मेडिटेशन। बट सेकेंड टाइम उन्होंने एक और बार मेडिटेशन की सेशन के एंड में, जब वो आंख खोल के मेडिटेट किए, जब हमने उनको ग्रेटिंग्स दिखाई and which allowed us to record gamma waves before meditation, after meditation and also during meditation. This is in some ways unique because this is only possible if meditation is done with open eyes. So we were really helped by I'll just conclude. So I'll skip a lot of details. I'll just say one thing, that we were really enormously helped by the Spark Wing. Unhone bahut kuch organize karke meditators aur kafi requirements thi hamari, wo sab unhone puri ki, humko bahut help ki. Main khali ek hi cheez bataunga ye sab skip karke, jo hamara main question tha, और ये स्लाइड है जो आंसर देती है। जब आपको मेंटल डिसऑर्डर होता है तो गामा वीक हो जाती है, राइट? ये देखिए, ये है मेडिटेटर्स और ये है कंट्रोल्स जिनका एज एंड जेंडर मैच्ड है, और बहुत लेवल्स ऑफ मैचिंग हमने की, एज जेंडर अलग अलग तरीके की मैचिंग की। और ये देखिए कि जो गामा है, ये जो लाल आप इधर देख रहे हैं, ये मेडिटेटर्स में कंट्रोल्स की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। So very significant result, which is only seen in this gamma range that you are seeing here. So in some ways, meditation actually boosts gamma rhythm. It reverses the effect of aging and neurodegeneration. And it's quite remarkable that we are able to see this in with this form of meditation. Going forward, we have other plans, but I'll conclude now and maybe take discuss this offline. So thank you very much for giving me this opportunity.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुप्रतिम रे जी. मैं जानता हूं कि सागर को गागर में समाना कितना कठिन होता है. आपने इतने वर्षों तक जो गहन रिसर्च किया है उसे सार में हम सबके सम्मुख रखा है और हम सब ने उसका सार अवश्य ग्रहण कर लिया है कि जितना गहराई से आप मेडिटेशन करते हैं उतने ही ज्यादा एक सुंदर उच्चतम स्थिति तक पहुंचते हैं जो अपने जीवन को और प्रकृति और पर्यावरण को भी परिवर्तित करने के लिए एक सुंदर आधार बन जाता है. तो हम सबको प्रेरित करता हूं अच्छे मेडिटेटर्स बने, अच्छे योग साधन के द्वारा न केवल स्वयं का परिवर्तन करें, स्वयं का उत्थान करें, वरन सारी सृष्टि को भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दें. हमारी आदरणीय दादी जानकी जी भी एक डेल्टा वुमन के रूप में जानी जाती थी. उनका मन हमेशा ही स्थिर रहा करता था. तो न केवल आप मेडिटेशन के समय स्थिर रह सकते हैं लेकिन चलते फिरते भी जब आप मेडिटेशन के अभ्यासी हो जाते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है और जो रेजिस की बात थे डॉक्टर सुप्रतिम जी कर रहे थे उस स्थिति तक भी हम पहुंच सकते हैं. तो आशा है कि अगली बार जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपके मन में बहुत ही सुंदर गामा जो तरंगे हैं वहां तक की आप स्थिति तक पहुंच जाए ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी. पहुंचेंगे ना सभी ऐसे मेडिटेशन करेंगे. तो एक बार जोरदार तालियां पुनः डॉक्टर सुप्रतिम जी के लिए, उनके रिसर्च के लिए. और हम कामना करते हैं कि आप और भी ऐसे सुंदर रिसर्च करते हुए मानव कल्याण कार्य कर्तव्य उन्हें करते चलें. अब मैं जो आज के हमारे सत्र के चेयरपर्सन हैं भ्राता डॉक्टर मधुसूदन पाल जी, साइंटिस्ट जी एंड डायरेक्टर सेवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपके नाम 19 पेटेंट्स हैं, 70 आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल और नेशनल जर्नल्स में. आप रिव्यूअर भी हैं 20 इंटरनेशनल जर्नल्स के और बहुत सारे अवार्ड्स आपको प्राप्त हैं. साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO, MA नाम्बियार मेमोरियल अवार्ड, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बायोमेडिकल साइंटिस्ट और भी बहुत सारे. तो मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर मधुसूदन पाल जी से कि आज की जो चर्चा हो रही है उस पर आप अपने आशीष और साथ ही प्रकाश हम सबके बीच रखें. डॉक्टर मधुसूदन पाल जी, हम कर्तव्य ध्वनि से भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू रूपेश जी फॉर रिगार्डिंग माय काइंड वर्ड्स. मैं DRDO में 26 साल कंप्लीट किए हैं बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड विद द ब्रह्मकुमारीज एंड दिस काइंड ऑफ बिग मेगा सोसाइटी स्पिरिचुअल फोरम. एंड इन दिस रिगार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल माई सिंसियर थैंक्स टू द ऑल स्पार्क ग्रुप दोज आर इन्वाइटिंग और क्रिएटिंग ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट इन द सोल टू सोल एंड आत्मा टू आत्मा. दिस इज ए बिग प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन स्पेशली इन द स्पिरिचुअल एंड साइंस. And first of all, I want to, as per the decorum of the Brahmakumari, I request all of you, please say Om Shanti. And as today's main topic, scientific mindset for Viksit Bharat, how we can contribute, हम लोग कैसे उसमें योगदान कर सकते, हम लोग उसको कैसे देखना चाह सकते, वो कैसे होना चाहिए, this is the totally individual facts. मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैं जो भी यहां पे बोलूंगा दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्टिविटीज टास्क. दिस इज माय टोटली पर्सनल ओपिनियन एंड व्यू. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मेरा जो थॉट प्रोसेस है विकसित भारत होने के लिए क्या क्या प्रोसेस क्या क्या स्टेज पहले होना चाहिए उसी के बाद हम लोग विकसित भारत बना सकते. जैसे मेरा थॉट प्रोसेस सबसे पहले होना चाहिए सुरक्षित भारत. एंड सुरक्षित का मतलब क्या है एज ए साधारण जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, इंसान है, तीन बेसिक चीज बहुत रिक्वायर है, रोटी कपड़ा एंड मकान। जब हम लोग रोटी कपड़ा मकान में सिक्योर्ड होती है, तब हमारा नेक्स्ट डिमांड क्या होना चाहिए, क्या होती है? थ्री, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वी नीड फॉर दैट। पहले एसेंशियल जो चीज खाना रोटी मिल जाए, देन उसके बाद चाहेंगे हेल्थ चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एडुकेशन चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। दिस इज अदर नीड्स। एंड सपोज हम लोगों को सारे सुरक्षित भारत मिल गया, देन तब क्या होना चाहिए? सुरक्षित भारत के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, सारा कुछ मिल गया, उसको मेंटेन करना चाहिए। वो मेंटेन कैसे होगा? उसको नेक्स्ट स्टेज होना चाहिए स्वच्छ भारत। एंड गवर्नमेंट हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ ए नहीं है, ओनली एनवायरमेंटल क्लीन, एनवायरमेंटल क्लीन, ऑफिशियल क्लीन, एवरीवेयर स्वच्छ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड बी ट्रांसपेरेंट। एंड उसमें एनदर, जब सपोज हम लोग कोई पॉलिसी बनाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, एनीथिंग, वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, नो हिडन एजेंडा। देन सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी इन द मेन स्वच्छता इज रिक्वायर्ड इन द माइंड ऑन द ह्यूमन ब्रेन। क्यों ना, माइंड जब स्वच्छ होगा तब ऑटोमेटिक आपको सारे जो भी हम लोग सोचेंगे, जो भी करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट होगा। तो फिर जब स्वच्छता भी हम लोग अचीव कर लेंगे, देन आते हैं सक्षम भारत। सक्षम भारत का मीनिंग क्या है? सक्षम मीन हम लोगों का जो भी चाहिदा है, जो भी डिमांड है, हम लोग बहुत सारे चीज विदेश से इंपोर्ट करते हैं अभी भी, इट मे बी द रॉ मेटेरियल। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ द वेरी बेसिक थिंग इन ऑफ द एनी काइंड ऑफ मेटेरियल, टेक्सटाइल, ऑल ऑफ द मेटेरियल वी आर इंपोर्टिंग, आई एम गिविंग एग्जाम्पल। देन रॉ मेटेरियल, टूल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग शुड बी इंडिजिनियसली डेवलप्ड, दैट कैपेबिलिटी शुड बी मेड फर्स्ट, देन वी कैन गो एट फॉर अदर स्टेज। देन व्हेन इट इज ऑल द प्रोसेस, रॉ मेटेरियल, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिस्टम, एनीथिंग इज अवेलेबल, देन वी कैन फुलफिल आवर डिमांड। वी नीड नॉट टू डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री, हम लोग इन हाउस में सारे कुछ ले सकते, मिल सकते, तभी होता है फुलफिल, तभी सक्षम भारत। देन सक्षम भी हो गए, देन नॉट स्टॉप देयर, कीप गोइंग ऑल द स्टेज, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, सक्षम भारत, कीप गोइंग, देन ओनली वी एबल टू अचीव द विकसित भारत। एंड विकसित भारत जब मेरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, विकसित भारत के साथ ये सबको सेफ्टी होना चाहिए, रोटी कपड़ा बेसिक नीड, एजुकेशन, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एंड सिक्योर्ड फॉर द ऑल कम्युनिटी। दिस इज माई कॉन्सेप्ट एज आई नो said that I am working in the DRDO. DRDO, what is the main mandate? Basically, we are not scientists. What we are doing? We apply the basic science, facts. Apply the tools and techniques to achieve something for what? Society and soldiers. As we are in the DRDO, our main mandate is soldiers. Support, enhance the soldiers in terms of their firepower, or in terms of their health, safety and occupational safety and sustainability. Habitability in the extreme climate of the India, it may be high altitude, it may be desert, it may be jungle, huge climate conditions. Based on this principle, science, soldiers and society, based on this triangle, DRDO is trying to contribute it very numerously to fulfill the governmental policy, Viksit Bharat. I am giving the few examples in the particular what we are in the DIPAS, Defense Institute of Physiology and Allied Sciences. Why I am take the name? DIPAS is very conception, perception of the Brahma Kumari associated with the DIPAS, Inmas and Professor Chandra. They all are associated with this Brahma Kumaris. Then what we have done for Viksit Bharat? Main agenda, when we are able to Viksit in terms of the firepower, in the particularly DRDO design the LCA cockpit, light combat aircraft, NGMBT, in terms of high-end technology. But main important thing, you know, if we are able to, technology and weapons is strong, but who will be the users? Human. Where it will be used? It may be high altitude, desert, jungle, in the different terrain. Then at first we have to comfort, safe, and safety of the jawans, individuals. To achieve this safety, we have, you know, still date we are import from the other country. soldiers only fabric clothing that is used in the minus 70 degree temperature Siachen glacier. And last 2 years back, DIPAS has designed and developed the indigenous Siachen clothing for the minus 70 degree temperature. Similarly, you know, everywhere observing what is the major challenges in the Jowans, they are also human, they are a part of the society. We are unable to walk in the high altitude desert or an extreme environment, but at this harsh environment, they have to carry 30 to 40 kg external load. Not only carrying the load, they have to vigil, alert, fight, win the battle. Then you think of what is the stress and what is the disturbance. Then for that purpose, major problem is the load carriage. In the DIPAS has conducted so many contributions, standard of the load carriage norms from the different terrain. Similarly, but major problem, we are trying to recently develop exoskeleton just like a Superman. When Jowans are carrying 30 kg load in their back, all the load transfers to the ground and will carry only 10 kg load. This is our latest challenging product we are planning to induct it. Another important main problem is the shoes. We are independence in the firepower, missile, rocket, technology. You know where we are, what is the main purpose from DRDO to industry, Minister of Industry, what I am coming. One is the main motto, we are self-dependent in the missile, tank. But you know, we are using the footwear. Not a one tools, mold and last, not one is the indigenous. Everything is imported. That's why main mandate, the government has created 7 centers of excellence to becoming a contribute to the Viksit Bharat. And economic transaction and production value, you know what is the demand of the footwear in globally, 24,000 trillion pair every year. And most consumer is the USA. One individual has minimum 7 pair of footwear. And in compared to USA, you know, in India, we are also not behind, approximately 3 pair per individual. Then what is the market and what is the volume that my target is? Now one is aspect is the science. Now I am coming to the how the spirituality should be integrated in the Viksit Bharat. One of the major important health is defined in the 2 things, physical and mental. Physical health, main important is how we are able to maintain the cognitive health and mental health. When we are planning to health status, spirituality, science and society, basically we have every time is maintain a balance. Suppose I am giving one example. When we are sitting, our heart rate is resting very within the control. If anything happens, suddenly heart rate will be increased. That is the imbalance. When we are control state, this is the continuous balance. If anything is happen, this balance. It may be any kinds of injury, accident, sudden incident. And if we are maintain the balance properly by using the meditation, if we are practicing the regularly meditation, we can enhance the capability of the individual level, maintain of the balance between the sympathetic and parasympathetic nervous system. And if it is the balance tone is well controlled, then main I am shortly the emotion. This is the very, very critical part of the human mind, emotion. Emotion is, we know, 2 types. It may be positive and negative. Why everybody is not becoming a crime, criminal? Everybody is not taking the suicide? What is the impact? Because there is emotional disbalance. If we are practice regularly by default, the emotional behavior will be increased. If the emotional behavior is increased, your head will automatically increase. One of the policies should be included for the Viksit Bharat mandate for the spirituality first in this mission. As per my concept, spirituality first, soul first, then comes science. If soul is not there, who will do the science? Please tell me. If soul is absent, then there is no question of the science. Then this is my totally personal concept, and I am thinking that direction, spirituality should be included in the one of the aspect for the Viksit Bharat program. Thank you very much for your patience and cooperation. Om Shanti again.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मधुसूदन पाल जी। आपने अंत में बहुत खूबसूरत सी बात कही कि यदि सोल ही नहीं तो फिर साइंस और अन्य चीजों की महत्ता, आवश्यकता या फिर उनको लेकर कोई बात ही नहीं। इसीलिए जो बीज है वहां से ही हम एक सुंदर शुरुआत करें और उसकी ओर ही हम अपना ध्यान दें। और इसके लिए ही अब हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि मेडिटेशन कितना आवश्यक है और यह हमें बाहर से अंदर की ओर लिए चलता है। और मेडिटेशन के लिए कहा जाता है कि हमारी टीम को बहुत स्ट्रांग कर देता है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, हमारी मेमोरी, हमारी बाह्य और आंतरिक जगत को बैलेंस कर देता है। तो ये प्रैक्टिकल राजयोग मेडिटेशन कैसे हमारे अंतर्मन को विकास की ओर लिए चलता है, शांति की ओर लिए चलता है और हमें उन्नत दिशा प्रदान करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्म कुमारी लवली बहन जी को, जो दिल्ली से हमारे बीच हैं। बचपन से ही आप विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और पिछले 1996 से आप समर्पित रूप से अपनी सुंदर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो मैं लवली बहन जी से अनुरोध करूंगा कि हमें प्रैक्टिकल राजयोग मेडिटेशन की ओर लिए चलें।
ओम शांति। आप सभी योगी ही हैं। सबसे पहले तो ये विचार अपने मन में स्थिर कर लें, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं और इतने सुंदर वातावरण में आपकी आजकल जो दिनचर्या चल रही है वो योग से ही आरंभ होती है। अनेक योगियों, तपस्वियों ने यहाँ अपना योग का बहुत सुंदर लक्ष्य प्राप्त किया है और आप भी उसी लक्ष्य से यहाँ पधारे हैं। तो इसके साथ साथ हम ये भी समझ लें कि योग माना जोड़, जो जुड़ता जा रहा है हमारे साथ तो जरूर कुछ छूटता भी जा रहा है। तो जब हम कुछ अच्छा लेते हैं तो कुछ जो कम अच्छा है या किसी कारण से यूज करके हम समझते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीजें हमसे जब छूटती जाती हैं तो हम भी योगी ही हैं। और योग अर्थात कनेक्शन, एक ऐसा सुंदर कनेक्शन जो छोटे से बच्चे को भी आता है। तो आप तो बहुत समझदार हैं, अनुभवी हैं अपने जीवन के। तो अभी मैं आप सभी को एक सुंदर यात्रा की ओर ले चलती हूँ। आप सभी जो सभी बैठे हैं, चाहे मंच पर बैठे हैं, चाहे आप सभी हॉल में कोई भी बैठे हैं, आप सब एक अपने आप को एक्टर समझ लें। हम सभी एक्टर हैं। हम सबके पास एक वीडियो फिल्म चल रही है और हम सब उसको देख रहे हैं। परंतु ये इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि ये फिल्म किसी और ने नहीं बनाई, इसके क्रिएटर हम खुद हैं, हम इसके मालिक हैं और हम इसको एक सुंदर गंतव्य तक, एक सुंदर मंजिल तक ले जाने वाले हैं। हम अपने क्रिएटर भी, डायरेक्टर भी हैं, लेकिन हम सबका एक सुप्रीम डायरेक्टर है, वो परमपिता परमात्मा, जिनके विषय में आज आपने सबसे पहले सेशन में सुना। तो चलिए हम उनके पास चलते हैं एक सुंदर यात्रा की तरह से। ये जो पांच तत्वों का शरीर है, हम सब इसके भीतर चैतन्य एक्टर हैं। कर्म करने के लिए हमें कर्मेंद्रियां प्राप्त हैं। चारों तरफ जो सुंदर दृश्य चल रहे हैं, अगर हम वो दृश्य से खुश नहीं भी जीवन में कभी रहे तो भी वो दृश्य चल रहे हैं। कभी कभी अपने आप को न्यारा डिटैच कर लेना है, जो हो रहा है उसको होते देखना और एक सुंदर अंत, एक सुंदर दृश्य को मन में इमर्ज करना कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, हर एक चैतन्य सत्ता जो परफॉर्म कर रहा है वो बहुत समझदार है, जो प्रकृति में चारों तरफ घट रहा है वह भी इस ड्रामा का सीन है। मैं इस ड्रामा को ऊपर से देख रहा हूं, जो भी जीवन में आज तक घटा है क्या हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम उस पर विचार क्यों करते रहते हैं। चलिए आज हम अपना भविष्य का ड्रामा नाटक एक बहुत सुंदर दृश्य से बनाते हैं। सूर्य चांद सितारों की ये दुनिया जहां हम वर्षों से नाटक और साथी कलाकारों से खेल की तरह चल रहा है सब कुछ, इससे थोड़ी सी देर के लिए हम अलग हो रहे हैं। प्रकृति और ये सब खेल नीचे है और हम सब इसको खेलने वाले इस शरीर से अलग चमकते हुए सितारे, वो नूर, वो लाइट ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, सितारे ऊपर की ओर जा रहे हैं, एक लाल सुनहरे प्रकाश के घेरे में हम सब जब वहां पहुंचते हैं, शांति, एक स्वीटनेस, एक शक्तिशाली दुनिया चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश में भरी हुई है। सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा उनसे आ रही शक्तियां किरणों के रूप में, ये हमारा अधिकार है कि हम सभी संतान इन सभी शक्तियों और गुणों से भरपूर धीरे खाली हो रहे हैं। तो आज हमें ये सुंदर अवसर मिला है अपने पिता से फिर से वही अधिकार उनके सानिध्य में प्राप्त करने का। अनेक वर्ष मैंने इन गुणों को इस संसार में खर्च कर दिया, अब पुनः उन गुणों को अपने अंदर भर रहे हैं। वह शांति, प्रेम, आनंद, सत्य, खुशी अपने भीतर भरते हुए हम परमपिता परमात्मा के सुंदर इशारे, जाओ बच्चे, विश्व को एक सुंदर विश्व बनाना है, आप मेरे समान जाकर धरती के सितारे बनकर एक सुंदर समाज देश और विश्व का निर्माण करो। आप मेरी प्रतिमूर्ति हो और हम सितारे धीरे धीरे वापस अपने कर्म क्षेत्र पर आ रहे हैं। मन में ये विचार लिए आगे का समय मेरे हाथ में है। उन विचारों को अपने जीवन से कर्म से मुझे गुणों का धनी बनकर व्यवहार कुशल बनकर सबकी ओर रहम करुणा दया परमात्मा के ये सुंदर भाव मेरे जीवन में सदा रहेंगे और मेरा और इस संसार का भविष्य एक बहुत सुंदर दुनिया के रूप में उभरने वाला है। परमपिता परमात्मा का दिल ही दिल हम धन्यवाद कर रहे हैं। आप हमें बीच बीच में जरूर ऐसी सुंदर यादें दें और सशक्त करें, अपने चारों ओर उन गुणों को प्रवाहित होने दें। आज हम जब किसी की ओर देखें तो मुस्कुराकर प्यार से ओम शांति बोलेंगे। ओम
योग की सुंदर गहन अनुभूति, और यही अनुभूति आप प्रातःकाल भी दो दिनों से कर रहे हैं, कल और परसों भी सुबह 4 से 4:45 अवश्य ही योग के सत्र में शरीक हों। आप महसूस करते हैं कि जैसे ही हम अपने अंदर जाते हैं एक अनंत ऊर्जा जैसे हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगती है, और इसी ऊर्जा की आवश्यकता। और मुझे लगता है आज की पूरी चर्चा का जो सार है वो यही कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जब भीतर जाएंगे तभी हम तरेंगे और तार पाएंगे, यही आज के पूरे सत्र का सार है जिसकी ओर हम सबको बढ़ना है। और जिन महानुभावों ने आज ऐसे सुंदर अपने हृदय की बातें और सुंदर जो विचार हैं हम सबके सम्मुख रखे हैं, अब मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो भी मंचस्थ महानुभाव हैं उन्हें शॉल से, स्मृति चिन्ह से और साथ ही ईश्वरीय प्रसाद देकर के यहाँ उनका सम्मान करें।